أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. الحمدللہ خداوند منان کا بہت ہی عظیم لطف و کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو اور ہمیں خداوند منان نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ماہ محرم کے فیوضات اور برکات سے مستفیض ہو سکے. جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے ماہ محرم بھی ولایت کا مہینہ ہے. جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے لیے روایات میں آیا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اگر اس مہینے کے اندر انسان سانس بھی لیتا ہے تو اس کا اجر ثواب خداوند منان کی تسبیح کرنے کے برابر ہے. اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ ماہ محرم میں نفس المحموم تسبیحن، جو بندہ اہل بیت اطہار کی مصیبت، سید الشہداء کی مظلومیت کو یاد کر کے ایک دکھ بھری آہ بھی نکالے، دکھ بھری سانس بھی لے، تو روایت میں ہے کہ اس کا اجر تسبیح خدا کے برابر ہے. تو یہ ایک عظیم فرصت ہے آپ کو اور ہمیں کہ اپنا رشتہ سید الشہداء کے ساتھ مضبوط کریں. اچھا، آج انشاءاللہ مقدماتی گفتگو ہے، तो चंद नुकात की तरफ मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँ और उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो इस अशरे के लिए मौजू इंतखाब किया गया है यानी शनाख्त करबला, फिर उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला पहला नुक्ता जिसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये महीना आज़ादारी का महीना है, अज़ा का महीना है, ये महीना आंसू बहाने का महीना है। ये महीना ऐसा है कि जिस महीने के अंदर इंसान अहल बैत अतहार के साथ अपने रिश्ते को आज़ादारी के ज़रिए से मजबूत करे। कि मशहूर एक रिवायत भी है, मैं उस रिवायत की तरफ इशारा करता हूँ, फिर इंशाल्लाह चंद आरज़ भी पेश करूँगा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मौला फरमाते हैं, मा मिन शैइन इल्ला वलहू कैलुन व वज़्नुन। कायनात में कोई भी चीज़ नहीं है मगर यह कि उसका एक पैमाना है और एक ख़ास मकदार में वज़न है। इल्लत दुमू, सिवाय आंसुओं के। कायनात के अंदर हर चीज़ का एक पैमाना है लेकिन आंसू ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी भी पैमाने में नहीं नापा जा सकता, किसी भी वज़न के ज़रिए से उसका वज़न नहीं किया जा सकता। मौला फरमाते हैं, फ़इन्नल ऐन इज़ा रक़त बिमाएहा हर्रमल्लाहु अलन्नार। अगर एक आंसू, एक आँख से अगर चंद आंसू के कतरे बहें तो मासूम फरमाते हैं कि खुदा उन आँखों पर जहन्नुम को हराम कर देता है। व इंसालत अलल खद, अगर वो इंसान के आँखों से गिर के नीचे आए, लई योहरे कहू कतरौन, कभी भी उस इंसान के लिए जिल्लत नहीं होगी। फ़इन कतरत, फ़इन कतरतम मिनद्दुमू लतुत्फी बिहारम मिनन्नार। आंसू का एक कतरा आग के समंदर को बुझा देता है। ये वाक़ियन अगर इंसान इस नुक्ते को मद्देनज़र रखे कि आंसुओं की कितनी कीमत है। और फिर रिवायात में बयान किया गया है कि जब भी तुम रोना चाहो, जब भी तुम्हारा दिल चाहे कि गिरिया करो, तो मासूम फरमाते हैं, फब के अलल हुसैन इन कुन तबाकियन अला शैइन फब के अलल हुसैन। अगर कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोना चाहते हो, आंसू बहाना चाहते हो, तो याद करो अगर तू अपने आंसुओं को बाअर्ज़िश बनाना चाहता है तो उन आंसुओं को मखसूस करो हुसैन इब्ने अली के साथ। फब के अलल हुसैन, ये आज़ादारी का महीना है। और वाकयन सैयदुश्शुहदा के गम में आज़ादारी का जो अज्र व सवाब है, इंसान दंग रह जाता है। मन बका औ अब का औ तबा का फवजबत लहुल जन्ना। कोई बंदा रोए रुलाए, अगर रो नहीं पाता, अगर रुला नहीं पाता, तबा का रोने जैसी शक्ल बनाए, फवजबत लहुल जन्ना, उस शख्स पर भी जन्नत वाजिब है। बहुत ज़्यादा अजमत है कि यहाँ पर ब्रैकेट में एक नुक्ते की तरफ इशारा करूँ और फिर चंद आरज़ भी अर्ज़ करूँ कि आखिर हुसैन इब्न अली पर रोने की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, क्यों सवाब है, क्यों अज्र है इतना ज़्यादा। बाद लोग इस रिवायत के बारे में जो मैंने आपके सामने पढ़ी, मन बका औ अब का औ तबा का फवजबत लहुल जन्ना, बाज आले मिंबर इस रिवायत का गलत माना करते हैं। हत्ता मैंने बाज रूहानी हजरात उलमा से भी ये बात सुनी है कि मुझे ताज्जुब हो रहा था कि ये किस तरीके से फरमा रहे हैं। एक बंदा मिंबर पर कह रहा था कि खुदावंद मुताल ने हर अमल के अंदर रिया को हराम करार दिया है। अगर इंसान के अमल के अंदर रिया आ जाए तो उस अमल की कोई अहमियत नहीं है, दिखावा आ जाए तो अमल की कोई अहमियत नहीं है। इस रिवायत को बहाना बनाकर वो कहता है सिवाय गमे हुसैन के, अगर गमे हुसैन के अंदर दिखावा हो तो भी उसका अजर है। ये जुमला मैंने बाज़ मिंबरियों से भी सुना है, हत्ता बाज़ मौलवियों से भी सुना है। नीचे से बहरहाल हमारा मजमा तो माशाल्लाह वाहवा करता ही है, तो नीचे से भी वाहवा शुरू हो गई। हालांकि ये बात गलत है, ये दुरुस्त नहीं है कि हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी में इंसान रियाकारी करे, दिखावा हो, यानी खुद उसे गम नहीं है, रियाकारी करे, दिखावा करे, बिल्कुल गलत है। रिया जिस जगह पर भी हो वहां पर खराब है। तो आप मुझसे पलट कर पूछ सकते हैं तबाका का क्या मकसद है? तबाकी यानी आपको रोना नहीं आता लेकिन आप रोने का दिखावा कर रहे हैं। तबाका यानी रोना नहीं आ रहा, आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे रोना आ रहा है। आया ये दुरुस्त है? इसके बारे में अर्ज करूंगा कि तबाकी का मकसद कभी भी रिया नहीं है। तबाकी और रिया में फर्क है। इस रिवायत के अंदर यह कहा जा रहा है कि तुम्हें पहले मरहले में रोना चाहिए, अगर रो नहीं पाते रुलाओ, रुला नहीं पाते तो रोने जैसी शक्ल बनाओ, लेकिन यह रोने जैसी शक्ल भी खुदा के लिए बनाओ, खुदा को मद्देनजर रखते हुए, न कि लोगों को दिखाने के लिए। रिया का मकसद यह है कि यानी आप पर वो कैफियत नहीं होती लेकिन आप दिखाते हैं लोगों को। इस रिवायत का माना यह नहीं है, इस रिवायत का माना यह है कि अगर किसी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे तो अपने आप को दिखाओ इस तरीके से कि तुम गमजदा हो, लेकिन यह तुम्हारा दिखाना भी खुदा के लिए हो, यह तुम्हारा दिखाना भी रसूलुल्लाह के लिए हो, यह तुम्हारा दिखाना भी आले मोहम्मद की रजा के लिए हो। लिहाजा ये गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे मिंबरों पर गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, इन गैर जिम्मेदाराना बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। वैसे ही अज्र है, इतना रोने का इतना अज्र है, लिहाजा क्या जरूरत है इस किस्म की बातों की तरफ जाने की कि इंसान आए और गलत बातें और गैर जिम्मेदाराना बातें बयान करे। करबला को याद करके, सैयदुश्शहदा को याद करके इंसान को आज़ादारी करनी चाहिए, गम मनाना चाहिए हुसैन इब्ने अली के लिए। अच्छा, सवाल यहाँ पर जो मुकदमाती तरीके से मैं आज बहस में वारिद होना चाहता हूँ, और शनाख्त आशूरा भी हमारा मौजू है, तो हमें जितने भी आशूरा के साथ मुंसलिक चीज़ें हैं, खुद आशूरा के अंदर जितने किरदार हैं उनकी शनाख्त हासिल करनी चाहिए, उनकी मारिफत हासिल करनी चाहिए। उन मवारिद में से पहली चीज़ जो आज इंशाल्लाह बयान करना चाहते हैं वो खुद ये आज़ादारी है, खुद ये आंसू बहाना है, खुद ये गिरिया करना है। आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा, हमारे जहन में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर हुसैन इब्ने अली पर रोने में क्या है, वो कौन सा ऐसा इकसीर और असर है इस गमे सैयदुश्शहदा के अंदर जो इंसान के बदन को जहन्नुम पर हराम कर देता है। एक आंसू का कतरा अगर हुसैन इब्ने अली के गम में आंखों से बहता है तो आखिर क्या होता है, कौन सा इनकलाब आता है कि इंसान की पूरी जिंदगी, इंसान का बदन जहन्नुम की आग पर हराम हो जाता है, जन्नत वाजिब हो जाती है। क्या है इसके अंदर? बहुत सारी बातें यहां पर कही जाती हैं, बहुत सारे नुकात बयान किए जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा एक चीज़ जो मेरे खुद जहन में आ रही है और एक आध रिवायत का सहारा लेकर उस मतलब को बयान करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पहला नुक्ता तो ये है कि खुद जो इंसान रोता है और आंसू बहाता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। कभी कभार इंसान रोता है, आंसू बहाता है, क्योंकि उसको हक की मारिफत होती है, हक को जानता है, एक शय की हक्कानियत को जानता है। वो हक्कानियत, हक अकीदा इंसान को रोने पर मजबूर करता है। मसलन कुरान मजीद में है, सूरह मायदा के अंदर मोमिनीन की खुदावंद मुताल सिफत बयान करता है, तरा अयुनहुम तफीजुम मिनद दमए। ऐ मुस्तफ़ा, जब ये कुरान नाजिल होता है और तुम अपने इन बामारिफत असहाब के सामने तिलावत करते हो तो इनके आँखों में आंसू छलक आते हैं। क्यों? इसलिए कि हक की मारिफत है। ये मारिफत हक भी इंसान को रुला देती है। यहाँ तक रिवायत में है कि जब ये आया करीमा, इन्नक मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये सूरह ज़ुमर की आयत है, जब ये आया करीमा नाजिल हुई तो पैगंबर अकरम भी गिरिया फरमा रहे थे, असहाबे पैगंबर भी गिरिया फरमा रहे थे, इस हकीकत और हक्कानियत को जानते हुए। कभी कभार इंसान खुशी में रोता है, इंसान खुश होता है, शौक के आंसू इंसान की आंखों से निकल आते हैं। रिवायात के अंदर वारिद हुआ है कि जब ये सूरत नाजिल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, जैसे इस सूरत को रसूलुल्लाह के चचा हज़रत अब्बास ने सुना तो आपने गिरिया करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये शौक के आंसू है, खुशी के आंसू है। कभी कभार इंसान ऐसे भी रोता है। और एक राइज गिरिया जो हमारे यहाँ है, खुद आतफी और एहसासाती, इंसान किसी जज्बाती मंज़र को देखता है, उस जज्बाती मंज़र की वजह से इंसान को रोना आ जाता है। इंसान के अवातिफ जज्बात इंसान को मजबूर करते हैं कि इंसान गिरिया करे। के रिवायात में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फर्जंद थे हज़रत इब्राहिम, 1 साल 6 महीने के थे, 1.5 साल के थे तकरीबन, जब हज़रत इब्राहिम का इंतकाल होता है तो पैगंबर अकरम गिरिया फरमाते हैं। खूब वहाँ पर कोई एक आध बंदा था, उसने एतराज़ किया, या रसूलल्लाह आप और गिरिया? वहाँ पर पैगंबर अकरम फरमाते हैं, लैसा हाज़ा बुकान व इन्नमा हाज़ी रहमा, ये रोना नहीं है, ये खुदावंद मन्नान की कज़ा के खिलाफ बात नहीं की जा रही, उसके फैसले से नारिजाइयत ही नहीं है, बल्कि ये तरहम है, रहमत है, रअफत है, ये है। और फिर आप आगे फरमाते हैं, मन ला यरहम ला युरहम, जो बंदा किसी पर रहम नहीं करता उस पर भी कोई बंदा रहम नहीं करेगा। तो ये आतफी गिरिया भी है जो आम तौर पर आप देखते हैं। कभी आपने कोई ऐसा रिक्कत अंगीज मंजर देखा, न चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हत्ता बस जगहों पर तो ऐसे होता है, कभी आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, कभी आप कोई ऐसा मंजर देखते हैं, उसके अंदर एक जज्बाती मंजर जैसे ही आपने देखा, हत्ता ड्रामा होता है, आपको पता है हकीकत नहीं है, लेकिन इंसान के जज्बात ऊपर आ जाते हैं, इंसान के अवातिफ ऊपर आ जाते हैं और इंसान गिरिया करना शुरू कर देता। तो कभी कभार इस तरीके से आतफी गिरिया भी है। कहने का मकसद यह है कि यह जो सैयदुश्शुहदा के लिए गिरिया कहा गया है कि आप लोगों को रोना चाहिए, आया इस गिरिए से मुराद ये आतफी गिरिया है कि वाकयन करबला के मनाजिर बहुत ही सख्त मनाजिर हैं, कि जिन मनाजिर को तारीख बशरियत अपने दामन में बहुत सारे वकाया को उसने देखा है, लेकिन ऐसे मनाजिर उसने नहीं देखे। मेरे ख्याल में फ़कत हुसैन इब्ने अली पर गिरिया करने को आप आतफी जज्बाती एहसासाती गिरिए के अंदर मुनासर नहीं कर सकते। ये जो इतना अज्र बयान किया गया है कि एक कतरा, इन्ना कतरतन, एक कतरा असलन जहन्नुम की पूरी आग को बुझाने की सलाहियत रखता है। खुब ये आतिफी गिरिया की बात तो नहीं है, अगरचे आतिफी तौर पर भी गिरिया करना चाहिए। इंसान के अवातिफ, इंसान के जज्बात, इंसान की फितरत का तकादा यही है। अगर ऐसे मनाजिर आते हैं तो इन मनाजिर पर इंसान को गिरिया करना चाहिए। अगर जिससे मोहब्बत करता है वहाँ पर दुख है, मुसीबत है, मुश्किलात है, तो मोहब्बत का तकाजा यह है, इश्क का तकाजा यह है कि आपको भी मकमूम होना चाहिए। यहाँ से पता चलता है वो जो बाद हजरात कहते हैं कि आशूरा के अयाम में, मुहर्रम के अयाम में खुशी मनानी चाहिए, ये लोग इंसानी फितरत से मुंसलिका है, इनका इंसानी एहसास से कोई ताल्लुक नहीं है, इंसानी फितरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी फितरत उसको ये इजाज़त देती है किसी मजलूम पर जुल्म हो, किसी मजलूम पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाए और आप खुशी मनाएं? ये कौन सी इंसानियत है? इस्लाम को छोड़े, मुसलमानी को छोड़े, कुरान को छोड़े, खुद इंसानियत को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इंसानी फितरत का तकाजा यह है, अगर कोई मजलूम है उस पर मजलूमियत हो रही है, अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो हद अकल उसके साथ शरीक तो हो जाए उसके गम में। ये कैसे बहुत बड़े बड़े अपने आप को आरिफ कहलाने वाले, अपने आप को सूफी कहलाने वाले, अपने आप को अहले माना कहलाने वाले अपनी किताबों में लिखते हैं कि मुहर्रम में खुशी मनानी चाहिए। अब ये वाकया तसव्वुर किया जा सकता है? ये कौन सा बंदा है जो इस बात को मानेगा? कौन सा बंदा है जो इस बात को तस्लीम करेगा? असलन इंसानियत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है कि अगर एक जगह पर जुल्म हो तो आप कहें कि आप यहां पर खुशी मनाएं। बहरहाल ये हुसैन इब्ने अली पर जो रोना है उसका फलसफा फकत ये आतिफी फलसफा नहीं हो सकता, ये फकत जज्बात, ये एहसास नहीं है, बल्कि हुसैन इब्ने अली पर जो इंसान गिरिया कर रहा है उसका एक फलसफा और जाहिरन किसी हद तक इंसान के वजूद के अंदर भी तहव्वुल पैदा करता है, तब्दीली पैदा करता है। एक रिवायत के अंदर, इसी रिवायत को मैं पेश भी करना चाह रहा हूं और आपकी ज़हमत को तमाम करूं, इस रिवायत को मरहूम इब्ने शहरा शोब ने मनाकिब में नकल किया है, इसी तरीके से मरहूम तबरसी ने एहतजाज तबरसी में नकल किया है। हमारी तारीख के एक अजीम मुहद्दिस, आपने नाम सुना हुआ है मरहूम कुलैनी का, उसके उस्ताद हैं, वो नकल करते हैं रिवायत साद इब्ने अब्दुल्लाह अशअरी कि हमारी तारीख के बहुत ही जय्यद आलिम गुजरे हैं, वो एक खूबसूरत रिवायत नकल करते हैं कि उसी रिवायत के साए में इस नुक्ते को भी बयान किया जा सकता है और मैं बयान करना चाह रहा हूं कि हुसैन इब्ने अली पर रोते वक्त हमारी ज़हनियत क्या होनी चाहिए, किस एतकाद के तहत, किस फिक्र के तहत, किस सोच के तहत हुसैन इब्ने अली पर आंसू बहाए ताकि हमारे वजूद के अंदर तहव्वुल और तब्दीली आए। और मज़ेदार बात है कि यह रिवायत भी जो साद इब्ने अब्दुल्लाह अशअरी से है, यह रिवायत भी वो किसी आम बंदे से नकल नहीं करता, गैबत सुगरा के ज़माने में है। किसी तरीके से मरहूम तबरसी कहते हैं कि साद इब्ने अब्दुल्लाह अशअरी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में फैज़याब होते, कि बहरहाल हुसैन इब्ने अली पर आज़ादारी का एक फ़लसफ़ा भी ये है कि अपने वक्त के इमाम की बारगाह में इंसान तसलियत अर्ज करता है। साद इब्ने अब्दुल्लाह अशअरी ये रिवायत नकल करते हैं हज़रत वली असर अरवाहुना लहुल फ़िदा से, कि रिवायत बहुत ही खूबसूरत है, अजीम असरार और नुकात इसके अंदर मौजूद है। मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी मैं इस रिवायत को आपकी खिदमत में पेश करूं और आपकी जहमतों को तमाम करूं। साद इब्ने अब्दुल्लाह अशअरी खुद नकल करते हैं, मरहूम तबरसी लिखते हैं कि अन साद इब्ने अब्दुल्लाह अशअरी रहमहुल्ला फ़ी हिकायत तशर्रुफ ही बे मुलाकात इमाम अल महदी सलवातुल्लाह अलैहि, कि जब मौला की खिदमत में पहुंचता है वो ख़ुद नकल करता है, जब मैं आका की खिदमत में आया, मौला की खिदमत में आया, कुछ सवालात मैंने मौला से पूछे। काल फ़कुल, तो उन सवालात में से एक सवाल मेरा ये था, मैंने कहा अखबिरनी अन तअवील काफ हा या ऐन साद। साद बिन अब्दुल्ला कहता है कि मैंने मौला की खिदमत में अर्ज़ किया कि मौला ये जो कुरान मजीद में है काफ हा या ऐन साद, इसकी क्या तावील है, क्या मकसद है इसका। खूब ये साद बिन अब्दुल्लाह अशअरी जैसा बंदा इमाम की बारगाह में सवाल उठा सकता है। खुद सवाल बंदे की मारिफत का पता बताता है। अगर कोई बंदा सवाल करे तो उसे पता चलता है कि किस लेवल का है, किस मारिफत का है। इमाम की खिदमत में आज तक कुरान मजीद को उठाकर देखें, जितनी तफसीरें लिखी गई हैं, सबसे ज़्यादा मौजल और मुश्किल तरीन मसला कुरान मजीद के अंदर यही हरूफ मुकत्तियात है। कोई बंदा जुरअत नहीं करता कि इनके बारे में आकर तफसीर लिखे। ये साद बिन अब्दुल्ला है जो इमाम को भी जानता है, उसे भी पता है कि अगर ये सवाल मैं इमाम से करूँ तो मुझे वही जवाब दे सकता। और सवाल भी तफसीर के बारे में नहीं, तावील के बारे में, कि इंशाअल्लाह बहरहाल किसी मौके और मुनासिबत से तावील के बारे में अर्ज़ करेंगे, लेकिन बहरहाल ये सवाल बहुत ही अजीम है। दूसरे लफ्ज़ों में ये साद इब्ने अब्दुल्लाह अशअरी है जो जानता है अगर कुरान के एक एक हर्फ का माना, मकसद, तावील, हकीकत, बातिल मुझे पूछनी है तो कहाँ से पूछूँ। ये साद इब्ने अब्दुल्ला अशअरी जानता है कि ये वली खुदा है, ये इमाम है, ये मुझे बता सकता है कि कुरान के एक एक हर्फ के असरार और रमूज कौन से हैं। बहरहाल कहता है कि मैंने ये सवाल इमाम की खिदमत में पेश किया, कि यही आज की हमारी मजलिस का पैगाम भी है और यही हमारी आज की मजलिस का मकसद भी है, कि वक्त भी गुजर गया। قال هذه الحروف من انباء الغيب, गैब का पता देते हैं, गैब की खबरें हैं। एक हर्फ है काफ, इमाम ये नहीं कहते कि ये इसका फला मकसद है, बल्कि इब्तिदा फरमाते हैं هذه الحروف من انباء الغيب, انباء नबा की जमा। ये हुरूफ ऐसे हैं जो गैब की खबरें देते हैं, ना गैब की फकत खबर, गैब की अखबार का पता चलता है। अतला अल्लाहु अलैहा अब्दहु जकरिया, ये सूरह मरियम के आगाज में है। इमाम फरमाते हैं कि इन हुरूफ की मारिफत खुदावंद मुताल ने अपने बंदे हज़रत ज़करिया अला नबीना व आलिही व अलैहि सलाम को दी। सुम्मा कस्सहा अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम, इन हुरूफ की मारिफत हज़रत ज़करिया को मिली और उसके बाद खुदावंद मुताल ने उस बात की हिकायत और किस्सा पैगम्बर इस्लाम से नकल किया। वज़ालिक अन्न ज़करिया सअल रब्बहु, वो किस्सा ये था कि ज़करिया ने अपने रब से सवाल किया अन युअल्लिमहु अस्मा अल खम्सा। अल्लाह अकबर, हज़रत ज़करिया ने खुदा की बारगाह में ये सवाल किया, खुदाया मुझे तालीम अता कर अस्माए खम्सा, पंजतन पाक के अस्मा की। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मुराद फ़कत ये तो नहीं है कि उनके नाम सिर्फ बताओ, ये तो पता था हज़रत ज़करिया को, तभी तो कह रहा है कि मुझे पंजतन पाक के अस्माए खमसा सिखलाओ, यानी नाम फ़कत इस तरीके से मुहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, अगर इस फकत नाम की हद तक है, वो तो हज़रत ज़करिया को मालूम है, तभी तो कह रहा है कि अन युअल्लिमहुल्लाहु अस्माअल खमसा। खुदा की बारगाह में सवाल क्या कि मुझे इन पंचतन पाक के अस्मा की तालीम दो। ये तालीम वही है जो कुरान ने एक मकाम पर बयान किया है कि वह अल्लम आदम अस्मा कुल्ला, कि खुदावंद मुताल ने हजरत आदम को अस्मा की तालीम इनायत की। अब वहां पर भी मुराद फकत नाम याद करना नहीं है, ये खसूसी तालीम है। अय्युअल्लिमहु अस्माअल खमसा फअहबत अलैहि जबराइल फअल्लमहु इयाहा। खुदा ने जबराइल को नाजिल किया और जबराइल ने जनाब ज़करिया को तालीम दी। यहाँ तक के रिवायत आगे चलती है और हज़रत ज़करिया जब भी उनमें से चार अस्मा को याद करते थे, खुदावंद मुताल हज़रत ज़करिया से तमाम गम हम हुज़्न जो भी परेशानी होती थी दूर कर देता था। वज़ालिक अन्न ज़करिया सअल रब्बहु, और आगे है कि वकान ज़करिया इज़ा ज़कर मुहम्मदन व अलियन व फ़ातिमत व हसन सल्लल्लाहु अलैहिम सरा अन्हु हम्महु वन जला कर बहु, गम ख़त्म कर देता था, मुसीबतों को दूर कर देता था। लेकिन व इज़ा ज़कर इस्मल हुसैन, लेकिन जैसे ही जनाब ज़करिया सैयद शुहदा का नाम लेते, रिवायत में कि खनकत हुल अबरा, आंसू गले में अटक जाते थे, व वक़त अलैहिल बहरा, गमगीन हो जाते। फ़काल ज़ात यौमिन, एक दिन हज़रत ज़करिया ने कहा इलाही मा बाली इज़ा ज़कर तो अरब अमिन हों, जब इनमें से मैं चार को याद करता हूँ, तसल्लई तो बे अस्मा एहिम मिन हुमूमी, जितने भी गम हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन व इज़ा ज़कर तुल हुसैन, लेकिन जैसे ही मैं हुसैन को याद करता हूँ, तदमा ओ ऐनी, मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं, व तसूर ज़ुफ़रती, फ़अम्बा अल्लाह ताला अन किस्सते ही, करबला का पूरा किस्सा खुदा ने ज़करिया को बयान किया। फ़काल, खुदावंद मुताल ने वही की, काफ़ा या ऐन साद फल काफ़ो इस्मो करबला, काफ़ करबला है, वल हा ओ हला कुल इत्रा, और हा से मुराद ये है कि इत्रत आल ताहिरा की शहादत, वल या यजीद, या यजीद है, वह ज़ालिमुल हुसैन, वल ऐनो अतशो, और ऐन से मुराद उस हुसैन इब्ने अली की प्यास है, अतश है, वसादो सब्रहु, और साद हुसैन इब्ने अली का सब्र है। जैसे ये किस्सा हज़रत ज़करिया को बयान किया गया, फलम्मा समिअ बिज़ालिका ज़करिया लम युफारिक मस्जिदहु सलासत अय्यामिन, तीन दिनों तक अपने आप को एक मस्जिद के अंदर बंद कर दिया, व मना फीहिन्ना नास मिनद दुखूल अलैह, हज़रत ज़करिया ने कहा कि किसी को इजाज़त नहीं है कि वो ज़करिया के पास आए। तीन दिनों तक मस्जिद में बैठकर हज़रत ज़करिया हुसैन इब्न अली की आज़ादारी करते। हाँ अजीज मान, ये जो माह मुहर्रम है, ये जो अज़ाए हुसैनी है, ये इस साल बहुत सख्त हालात में है। आज़ादारी के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान हतमन और हतमन बहुत ज़्यादा शोर और गुल के अंदर जाए, ना, अगर अपने ऊपर दरवाज़ा बंद करके एक कोने में बैठकर भी हुसैन इब्न अली पर गिरिया करता है तो ये भी आज़ादारी है। और अजीज़ान मन, यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस जुमले को अर्ज़ करूँ कि सख्त तरीन हालात में मुहर्रम है। इस मुहर्रम के अंदर जितनी जिम्मेदारी हमारी यह है कि आज़ादारी हुसैन इब्ने अली को बपा करें, इतनी जिम्मेदारी यह है कि अपना और अपने जैसे दूसरे मोमिनीन की सेहत का ख्याल भी रखना है, उनकी जान की हिफाजत करना भी आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। कभी भी हुसैन इब्न अली नहीं कहते कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचाओ। हमारे यहां जज्बात और एहसासात कभी कभार इतने ऊपर आ जाते हैं कि बसीरत से ऊपर चले जाते हैं। आज़ादारी होनी चाहिए, मजालिस होनी चाहिए, लेकिन जैसे हालात उन हालात के एतबार से बैन अल-अक़वामी सतह तक जितने भी माहरीन हैं, जो जो वो वसीयतें करते हैं, जो जो सिफारिशात करते हैं, उनका लिहाज करना है। यह फकत इसलिए नहीं है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, बल्कि इसलिए ताकि मैं अपने दूसरे मोमिन भाई का भी ख्याल रखूं। खुद ये आले मोहम्मद का तरीक़ेकार है। बहरहाल, तीन दिनों तक हजरत ज़करिया उस मस्जिद में रहे और हुसैन इब्न अली का जिक्र करते रहे कि दामन वक्त में भी बिल्कुल गुंजाइश नहीं, गुजर गया। यहां पर है वो जो जुमला के जिसकी वजह से मैंने आपको जहमत भी दी है। उसके बाद फिर हजरत ज़करिया वहां पर एक मरसिया पढ़ते हैं। वो मरसिया पढ़ने के बाद रिवायत में है कि हज़रत ज़करिया आखिर में ये दुआ मांगते, सुम्मकान यकूल, फिर ज़करिया कहते थे, इलाही और ज़ुकनी वलदान, खुदाया मुझे एक बेटा अदा कर, तकिर्रु बिही ऐनी, जो मेरी आँखों की ठंडक हो, और ज़ुकनी वलदान अलल किबरे, बेशक मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मुझे एक बेटा चाहिए। क्यों? हम भी खुदा से बेटा मांगते हैं, जिसको औलाद नहीं होती वो भी बेटा मांगता है, लेकिन हजरत ज़करिया क्यों बेटा मांग रहे हैं? फ़ाइज़ा रज़क़तनी फ़फ़्तन्नी बिहुब्बिही, खुदाया जब तूने मुझे बेटा दिया तो मेरी दिल को उस बेटे की मोहब्बत से पुर कर दे, बहुत ज्यादा मैं उससे मोहब्बत करूं। सुम अफ़जेनी बे कमा तुफ जे ओ मुहम्मदन हबीबा का बेवलद ही, खुदाया जब तूने मुझे ये बेटा दिया तो उस बेटे की मुसीबत में मुझे भी उसी तरीके से आज़ादार बनाना जिस तरीके से तूने अपने हबीब मुस्तफ़ा को अपने बेटे के लिए आज़ादार बनाया। फ़रज़क़हुल्लाहु यहया, खुदा ने हज़रत ज़करिया को यहया जैसा बेटा इनायत किया। वफ़ज्जअहु बिह, और फिर उसी की मुसीबत में हज़रत ज़करिया को मुब्तला किया कि इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत यहया का ताल्लुक़ करबला से बहुत अजीम है, लेकिन आज जो मैं नतीजा लेना चाह रहा हूँ इस रिवायत से, रोना चाहते हैं, गिरिया करना चाहते हैं हजरत ज़करिया, लेकिन क्यों? इसलिए कि अपने आप को शबीह मुस्तफ़ा बनाना चाहते हैं, तशब्बुह पैदा करना चाहते हैं। खुदाया तेरा आखिरी नबी, तेरा हबीब मुस्तफ़ा, वो भी गिरिया करेगा, वो भी रोएगा, वो भी आज़ादार बनेगा, मैं भी चाहता हूँ मुस्तफ़ा की तरह आज़ादार बनूँ, मैं भी चाहता हूं पैगंबर इस्लाम की तरह आज़ादार बनूं। अजीज मान, हुसैन इब्ने अली पर गिरिया करने के बहुत सारे फलसफे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फलसफा यह है कि इंसान गिरिया इस नीयत के साथ करे कि अपने आप को तशब्बुह दे, अपने आप को उनकी तरह बनाए कि जो हुसैन के गम में आज़ादार हो। दूसरे लफ्ज़ों में अजीज मान, जब भी हुसैन इब्न अली पर गिरिया करो, जब भी हुसैन पर रो, जब भी हुसैन पर आज़ादारी करो, तो नीयत ये हो कि मैं रोता हूँ इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह रोए थे, मैं गिरिया करता हूँ क्यों? इसलिए कि जनाब सैयदा ने गिरिया, यानी आज़ादारी करे इस नीयत के साथ कि अपने नफ्स की सिनखियत पैदा करे, मुनासिबत पैदा करे रसूलुल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह के साथ मुनासिबत पैदा करे, अली मुर्तज़ा के साथ मुनासिबत पैदा करे, जनाब सैयदा के साथ मुनासिबत पैदा करे। ये तशब्बुह बहुत ज्यादा आम है। यहां पर भी देख रहे हैं ना हजरत ज़करिया, क्यों? इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आज़ादार बनेंगे, वो आज़ादार होंगे। अभी करबला हुई नहीं है, अभी ये वाकया हुआ नहीं है, लेकिन हजरत ज़करिया यहया का भी सवाल इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं हुसैन का आज़ादार बन सकूं, मैं मुस्तफ़ा जैसा बन सकूं, खूब उस जैसा बन सकूं, यानी उसकी तरह आज़ादार बन सकूं। हाँ अजीज़ मान, अपनी मारिफत को थोड़ा सा ऊपर लेकर आए। हमारा गिरिया फ़कत आतिफी नहीं होना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। हम लोग जो आशिक हैं, जो मुहिब हैं इस ख़ानदान के, अपनी आंखों से जब आंसू बहाएं तो नीयत ये होनी चाहिए ये आंसू उसी तरीके से बहे जैसे मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू बहे थे। हाँ अजीज़ान मन, ये मुहर्रम है जो आपके लिए और हमारे लिए आंसुओं का तोहफा लेकर आता है। ये आज़ादारी बहुत ही अहम है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, बहुत ही अहम है। इंसान के कल्ब पर जो कसावत होती है, जो सख्ती होती है, उसको नरम करने के लिए ये आंसू हैं। बहुत ही अहमियत के हामिल है। बस अजीज़ान मन, एक दो जुमला और ज़हमतों को तमाम करूँ। बिलाखिर वो वक्त आ जाता है कि हुसैन इब्ने अली नाना के जवार को छोड़ना चाहते हैं, रसूलुल्लाह की कब्र को छोड़ना चाहते हैं, नाना मुस्तफ़ा के मदीने से निकलना चाहते हैं। कि तफसीलात आप सुनते हैं, दो रातें मुसलसल नाना की कब्र पे जाते हैं, आहो बुका करते हैं, गिरिया करते हैं, बरहाल खुदा हाफिजी करते हैं, भाई हसन से खुदा हाफिजी करते हैं, अपनी माँ जहरा से खुदा हाफिजी करते हैं। आज हुसैन नाना का मदीना छोड़ रहा है। बरहाल हुसैन इब्ने अली आमादा होते हैं, तैयार होते हैं, हज़रत अबुल फजल अब्बास को हुक्म देते हैं महमिलों को तैयार किया जाए। अजब रिवायत है, जब सारे महमल तैयार हो जाते हैं, बाज़ बुज़ुर्गान कहते हैं कि एक महमिल पर हुसैन इब्ने अली का खुसूसी एहतमाम था। महमिल तैयार हो रहा है, हज़रत अबुल फजल अब्बास देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार हुसैन इब्ने अली पूछते हैं, ये महमल आरामदा तो है? इस महमल के अंदर जो बैठेगा उसको तकलीफ तो नहीं होगी? आराम से बैठा जाएगा? बिलाखरे हुसैन इब्ने अली और ज़्यादा इत्मीनान के लिए जनाब फिज़ा को कहते हैं, अम्मा फिज़ा आप खुद जाएं और उस महमिल के अंदर बैठकर महसूस करें, वाकई तकलीफ दे तो नहीं है। आगा बुंदानी निशाबूरी फरमाते हैं, 40 साल इस आलम दीन ने मकातिल पर काम किया है, वो कहता है कि जनाब फिज़ा बैठकर वापस आई और वापस आकर कहा कि मौला महमिल बिल्कुल आरामदा है। इस बुज़ुर्गवार आलिम के बकौल गोया के हुसैन को अभी भी इत्मीनान नहीं हुआ। हुसैन इब्ने अली ख़ुद जाते हैं, महमिल के अंदर बैठकर ये महसूस करना चाहते हैं कहीं तकलीफ़ तो नहीं होगी, कोई सख्ती तो नहीं होगी। हाँ अजीज़ान मन, ये वो महमिल है जिस महमिल के अंदर जनाब ज़ैनब आलिया ने बैठना है। मकातिल ने लिखा कि हुसैन खुद बैठे, इत्मीनान किया, जब मुकम्मल तौर पर मुतमैन हुए तो उसके बाद जनाब ज़ैनब आलिया को उस महमिल के अंदर बिठाया गया। बिठाने के लिए हजरत अब्बास एक तरफ से है, हुसैन इब्ने अली एक तरफ से है, हजरत अली अकबर एक तरफ से, बड़े एहतमाम के साथ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को इस महमिल के अंदर बिठाया जाता है। अजीजान मन, मैं एक जुमला कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला मौला आज आपने इस महमिल को खुद आमादा करवाया, जनाब फिजा ने चेक किया, आपने खुद देखा, लेकिन हाय करबला, असरे आशूर के बाद 11 मुहर्रम को ज़ैनब को जब ऊंटों पर बिठाया जाएगा महमिल नहीं होगा, बगैर पलानों के ऊंट होंगे, अरे यही ज़ैनब उस पे सवार होगी। अला लअनतुल्लाह हे अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबीन यनक़लिबून।